शांति, ओम शांति। संगम युग पर हम सभी बाबा के बच्चे पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं, क्योंकि संगम युग पर ही हमें सभी वर्षे में अधिकार में खजाने बाबा के प्राप्त होते हैं, और जो केवल एक जन्म के लिए नहीं लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए। 21 जन्म तो बाबा की गारंटी है, और उसके आगे भी अनेक जन्मों तक ये अविनाशी खजाने हम आत्माओं की प्रॉपर्टी है। संगम युग पुरुषोत्तम युग है, धर्माओ युग है, परमात्म अवतरण का युग है, और इसीलिए इस युग में शिव बाबा हम बच्चों के लिए दाता विधाता और वरदाता के रूप में भोले भंडारी बन करके अपने सब भंडार हमारे लिए खोल देते हैं। और यही युग है जिसमें हमें एक का पदम गुना, अगर हम एक श्रेष्ठ कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो उसका हमें पदम गुना प्राप्ति होती है, जिसमें हम पूरे कल्प का खाता अपना जमा कर सकते हैं। दुनिया में भी लोग पुण्य कर्म करते हैं, भक्ति में भी लोग दान पुण्य करते हैं, लेकिन उस दान पुण्य की प्राप्ति भी ऐसी ही है कि अल्पकाल के लिए उसकी प्राप्ति हो जाएगी करके एक जन्म तक उसकी प्राप्ति हो जाएगी। लोग अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, नेत्र दान करते हैं, रक्त दान करते हैं, धन दान करते हैं। पुण्य का अर्थ कल बाबा ने कहा मुरली में, अगर हम दान देते हैं, दान करना माना पुण्य करना, तो उसका अर्थ क्या है? समय पर सहयोग देना। किसी भी आत्मा को जब आवश्यकता है, आवश्यकता के समय पर उसके काम आना, उसे सहयोग देना, ये पुण्य करना है। या सुख देना, यदि हम दूसरों को सुख देते हैं, खुशी देते हैं, तो उनकी दुआएं हमें मिलती हैं, तो ये हमारा पुण्य का खाता बनता है। तो वो दुनिया में जो भी कर रहे हैं, वो भी यही प्रयास करते हैं कि जो हमें प्राप्त है उसके द्वारा हम दूसरों को सहयोग दें। अगर हम धनवान हैं, धन संपन्न हैं, तो हमारे धन से हम दूसरों की गरीबी को दूर कर पाए, लेकिन फिर भी गरीबी तो दूर नहीं होती है, और उसका कारण कि धन संपन्न लोग बहुत कम हैं और गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है। और बाबा तो आते ही हैं सदा काल के लिए सभी की गरीबी दूर हो जाए, तो हम बाबा के बच्चे भी दान करते हैं, यानी हम भी अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, धन दान करते हैं, लेकिन अब हम इनडायरेक्ट नहीं करते जैसे दुनिया में लोग करते हैं। कुछ ईश्वर अर्थ करते हैं, कुछ ईश्वर के अर्थ नहीं भी करते हैं, सिर्फ भाव और भावना से करते हैं, लेकिन भाव और भावना में भी अंतर है। किस भावना से किया उस अनुसार उसका फल जमा होता है, हम सभी जानते हैं। अगर निस्वार्थ भाव से किया तो कहते हैं कि पूरा जमा होता है, गुप्त दान महापुण्य। एक हाथ से किया तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चले, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गुप्त दान में विश्वास रखते हैं ना, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करेंगे जो भी करेंगे। लेकिन अधिकतर लोग इच्छा रखते हैं कि हमने इतना धन दिया है या इतना हमने सहयोग दिया है तो उससे हमें कुछ नाम मिलना चाहिए, या फिर उसका वो वर्णन करते हैं। वर्णन करते हैं माना मैंने इतना किया। तो अगर हमने उसका वर्णन किया या उससे हमें नाम मिला तो उसका फल हमने आधा यहीं खा लिया, आधा फल खत्म हो जाता है, वो जमा नहीं होता है, कम जमा होता है। और मानो हमने वो दान किया, दुनिया में भी ऐसे होता है कि अगर दान किया और उसमें कोई विघ्न आ गया, आपस में ही उसको लेकर के कुछ कहा सुनी हो गई, बहस हो गई, टेंशन हो गया, तो वो पूरा ही समाप्त हो जाता है। हम बाबा के बच्चे भी किस भाव से करते हैं, हम बाबा के घर में डायरेक्ट बाबा के अर्थ करते हैं तो हमारा एक जन्म के लिए नहीं लेकिन आने वाले 21 जन्मों के लिए जमा होता है। लेकिन अगर हमने भी गुप्त दान किया है तो महापुण्य यानी 100% वो जमा होता है, जो पदम गुना होकर के जमा होना चाहिए। जैसे पुराने समय में जो माताएं थी वो एक कटोरी घी ले आएंगी, बाबा के घर के लिए एक कटोरी चावल ले आएंगे, हाँ एक कटोरी अनाज कुछ भी दाल वो ले आएंगे। लेकिन बहुत प्यार से दिल से है, उतना नहीं जितना है, भाव ये है कि बाबा के घर में हमारा कना दाना भी लगे। एक बार ऐसे ही सुनाते हैं हमारे बड़े जो बाबा के टाइम के, कि अमृतसर के एक भाई वो चावल की एक पोटली लेकर के आए और उन्होंने साकार बाबा को दी, कहा बाबा ये चावल मेरी भावना है, जो भी यज्ञ में भाई बहने रहते हैं उन सबको बनाकर खिलाना है। तो बाबा ने कहा कि तुम तो सुदामा के चावल लेकर आए हो, तुम्हें सतयुग में महल मिल जाएंगे। तो वो सुदामा के जो चावल का यादगार है, हम ऐसा सोचते हैं शायद ऐसे ही बाबा के बच्चों से बना है कि हम क्या देते हैं बाबा को। तो हमारे पास तो कखपन ही है, कितना थोड़ा हम सफल कर पाते हैं अपना जो भी हम बाबा के घर में देते हैं। लेकिन भाव और भावना की बात है, तो यदि हम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं तो वो पूरा जमा होगा। लेकिन अगर हमने वर्णन कर दिया उसका, सुना दिया उसको, या हमने इच्छा की, कोई स्वार्थ रखा उसके पीछे कि हम बाबा के घर में कर तो रहे हैं, लेकिन जैसे भक्ति में भी लोग भगवान से करते ना सौदा करते हैं कि हम इतना कर देंगे अगर आप मेरी ये मनोकामना पूरी कर दोगे। तो कई बार भक्ति के संस्कार है ना, अभी भी हमारे पूरी तरह भक्ति के संस्कार गए नहीं है, तो हम क्या करने लगते हैं कभी कभी, सभी बाबा के बच्चे नहीं लेकिन कभी कभी हम थोड़ा बहुत बाबा से फिर सौदा भी करते हैं कि बाबा ऐसा होगा तो हम इतना जो है बाबा के घर में कर देंगे। तो फिर वो हमारा पूरा जमा नहीं होता है, पूरा जो हमें पुण्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। फिर कहते हैं तुरंत दान महापुण्य। अगर हमें कभी शुभ संकल्प आया है कि मुझे ये करना है ईश्वर अर्थ और हमने तुरंत कर दिया तो वो हमें पूर्ण सफलता मिलती है। लेकिन अगर हमने उसको थोड़ा टाल दिया, तुरंत नहीं किया, ठीक है संकल्प आया है कल कर लेंगे या जब होगा हमसे तब कर लेंगे, तो उस बीच में कई परिस्थितियां आ सकती हैं, विघ्न पैदा हो सकते हैं और हमारा जो हमने संकल्प किया वो टल सकता है, यानी हमेशा के लिए वो नहीं हो पाए हमसे, ऐसा भी हो सकता है। और इसीलिए कहते हैं काल करे सो आज कर, यानी जो शुभ काम है उनको अभी का अभी कर लेना चाहिए जो शुभ संकल्प हमें आते हैं। और पुण्य और पाप दोनों का संबंध है, तो पुण्य कर्म तो है सहयोग देना, निस्वार्थ भाव से कर्म करना, लेकिन पाप क्या है? विकारों के वश होकर के हम जो कर्म करते हैं वो हमारे पुण्य को नष्ट करते हैं। हम कर्मों की गुह्य गति में सुनते हैं ये कि जो भी विकारी भावनाएं मन में आती हैं और उसके वश कर्म हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मानो किसी आत्मा के प्रति मेरे मन में कोई विकार के वश भावना जन्म लेती है। वो काम विकार के भी हो सकती है, क्रोध यानी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये भी हो सकता है, कोई लोभ वृत्ति भी हो सकती है, मोह भी हो सकता है, जिसे हम लगाव झुकाव कहते हैं वो भी हो सकता है, अहंकार यानी मैपन का भाव भी हो सकता है, कोई भी जो भी विकारों के वश भावनाएं मन में पैदा हो जाती हैं वो हमारे पुण्य को नष्ट करती हैं और पाप को बढ़ाती हैं। बाबा कहता है एक का अगर पदम गुना प्राप्ति है तो एक का 100 गुना दंड भी है। और इन सब पर कई बार हमारा बहुत अटेंशन नहीं होता है। सारे दिन में जो भी हम कर्म कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, व्यवहार में आ रहे होते हैं, तो हम इसे चलता ही है, कौन संपन्न बना है, सभी तो ऐसा कर रहे हैं, मैंने भी ऐसा किया तो क्या हुआ, हम बहुत उसे साधारण रीति से अलबेलेपन में चलाते हैं। और क्या करते जाते हैं? जो अभी हमारे पुण्य का खाता बढ़ाना चाहिए उसकी बजाय छोटे छोटे पाप, बहुत बड़े बड़े पाप नहीं करते हैं हम ब्राह्मण बनने के बाद, लेकिन बाबा कहते हैं विकारों के अंश वंश, ये मोटे रूप नहीं है, सूक्ष्म रूप है, माया के रॉयल रूप है। और अगर हमने अटेंशन नहीं दिया तो ये रहने ही वाले हैं हमारे साथ, और हर दिन हम बहुत छोटे छोटे ये विकर्म करते करते अपना पाप का बोझा बढ़ाने लगते हैं और फिर हमारा योग नहीं लगता है। बाबा की याद में बैठते हैं तो ये पाप का बोझ हमें नीचे उतार देता है, क्योंकि अगर आत्मा हल्की नहीं है, डबल लाइट नहीं है, तो उड़ नहीं सकती। उड़ने के लिए लाइट स्थिति चाहिए। तो ये निशाने हैं, तो हमें ये रोज चेकिंग करना अपना जरूरी है। बाबा हमें कहता है कि कोई कैसी भी आत्मा हो उसके प्रति सदा मेरी शुभ भावना होनी चाहिए। आज भी था ना वरदान में, क्या था आज वरदान में? बाबा ने कहा कोई क्रोध भी कर रहा है मानो, तो क्या करना है? हमें रहम का शीतल जल डालना है, तेल के छींटे नहीं डालने। हम क्या सोचते हैं? परिस्थिति ही ऐसी है ना, ये व्यक्ति ही ऐसा है ना, वायुमंडल ही ऐसा है ना, तो हम क्या करें, हो जाता है, हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाता है, मेरे भाव बदल जाते हैं, ये करता ही ऐसा है ना, करती ही ऐसा है ना मानो। और अगर मेरे भाव और भावना बदले तो मेरा हिसाब किताब कर्म बंधन छूटने की बजाय मैंने और उसको पक्का कर दिया, यानी अपने पाप के खाते को मैंने बढ़ा लिया। हालांकि ये सिर्फ मनसा के स्तर पर है, हम शायद बोलते नहीं हैं लेकिन मन में नेगेटिव भावनाएं ले आते हैं उन आत्माओं के प्रति। पर अगर मैं ऐसे समझती हूं कि ये आत्मा अगर क्रोध कर रही है तो ये माया के वश है, इस वक्त इसके तमो प्रधान संस्कार इमर्ज हैं, तो मेरा फर्ज क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य है इस आत्मा को सहयोग देना ताकि इसको शांति मिले। और उस समय अगर हमने उसको वो सहयोग दिया, यानी हम शांत रह गए, उसको शांति का दान दिया, तो बाद में उनको अपने आप रियलाइज होता है और वो उसमें परिवर्तन भी लाते हैं। तो हमने अपना कर्तव्य निभाया, और नहीं तो क्रोध में हमने भी क्रोध किया तो फिर हमने उसको बढ़ा दिया। तो जब भी हम कर्म करते हैं, उस कर्म में हमें ये अटेंशन देना है कि मेरे बोल व्यवहार में मेरी जो भावनाएं हैं वो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, बाबा की श्रीमत प्रमाण हैं। और यदि हम बाबा की श्रीमत प्रमाण कर्म करते हैं तो फिर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है। बाबा की याद में कर्म किया, बाबा को याद किया और एक बिंदी लगाई। बाबा हमें तीन बिंदी का पाठ पढ़ाते हैं, मैं आत्मा बिंदी हूँ, शिव बाबा बिंदी है और ड्रामा बिंदी है। बाबा को याद किया माना मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाबा बिंदी है। तो जैसे ही हमने बाबा को याद किया हमारा पुण्य का खाता बढ़ जाता है, और जितना हम निरंतर योगी रहते हैं, जितना हम अपना याद का चार्ट बढ़ाते हैं उतना हमारी कमाई जमा होती जाती है। और बाबा की याद में कर्म कर रहे हैं तो हर कदम में पद्म है, तो हम पद्मा पद्म पति हैं। बाबा कई बार कहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। अब रिचेस्ट इन द वर्ल्ड क्यों कहा, हाईएस्ट होलीएस्ट एंड रिचेस्ट। देखने में तो हम साधारण हैं, तो दुनिया में भी जो आज रिचेस्ट कहलाते हैं, बाबा कहता है कि वो चलो एक घंटे में 1 करोड़ कमाते होंगे लेकिन पद्म तो नहीं कमा सकते। तो यहाँ कदम में पद्म, पद्म कमल को भी कहते हैं। तो यदि हमारी पद्म समान स्थिति है, कमल फूल समान जीवन बाबा कहता है, तो बिल्कुल हम हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर रहे हैं जो सारे कल्प हमारे साथ चलने वाली हैं। तो इस थोड़े से समय में, जो थोड़ा साल का समय हमें मिला है संगम युग में, हमारे जीवन का भी कितना समय, मैं समझती हूँ कि हमारी आयु जितनी भी हो उसमें से कितने कम साल के लिए हमें बाबा का ज्ञान मिला। अब कितने साल और हैं हमारे वो भी कोई निश्चित नहीं है। तो इस थोड़े से समय में हमें केवल 21 जन्मों की नहीं पूरे कल्प की कमाई जमा करनी है। तो ये समय कितना वैल्यूबल है, और इसीलिए बाबा कहता है कि संगम युग का समय भी खजाना है। हमारा एक एक सेकंड वैल्यूबल है, एक एक सेकंड भी वर्षों के बराबर है। तो यदि हम समय को व्यर्थ गंवाते हैं, कई बार हम समय की वैल्यू नहीं समझते हैं और यूं ही व्यर्थ की बातों में, इसके उसके समाचार की लेन देन में, या वैसे ही आजकल सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर है, सोशल मीडिया सब समझते हैं, व्हाट्सएप है या इंटरनेट है, जो भी टेलीविज़न है, उसमें भी हमारा काफ़ी समय चला जाता है। तो अगर हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं तो फिर हम अपनी कमाई में कमी ला रहे हैं। और इसीलिए बाबा कहता है कि मैं सबको एक जैसा देता हूँ, एक के द्वारा एक जैसा, किसी में अंतर नहीं रखता है बाबा कि ये समर्पित हैं इसीलिए इनको ज़्यादा, इनको 10 पद्म, और ये परिवार में रहते हैं ट्रस्टी बन के रहते हैं इसलिए इनको 2 पद्म, ऐसे डिफरेंस करता है बाबा? बाबा कोई डिफरेंस नहीं करता। और बाबा कहता है इतना अखुट खजाना है कि सारी दुनिया की आत्माएं भी अगर बाबा से ले लें तो भी खुटने वाला नहीं है, लेकिन लेने वालों में अंतर पड़ जाता है। क्योंकि हम उस खजाने को कितना संभालते हैं और कितना उसे बढ़ाते हैं, दोनों ही बातें हैं। ज्ञान का खजाना मिला हमें बाबा से, हमें शक्तियों का खजाना मिला, गुणों का खजाना मिला, संकल्प का खजाना मिला, समय का खजाना, हमने बात की समय, स्वास्थ्य, संकल्प, ये सब खजाने, ये अविनाशी खजाने हैं। वो धन दान करेंगे तो वो धन कम भी हो सकता है, स्थूल धन दान करेंगे तो उसमें कमी आ सकती है, लेकिन ये अविनाशी खजाने ऐसे खजाने हैं कि जितना हम दान करेंगे उतना ही बढ़ते हैं, जितना सफल करेंगे उतना हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा। जिसे कहते हैं धन दिए धन ना खुटे, ये वो वाला धन है। तो ज्ञान धन भी वो धन है, हमें बाबा के ज्ञान को, बाबा के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, ये हम बाबा के बच्चों की जिम्मेवारी है। आज भी बाबा की मुरली में था, कितना बाबा ने कहा, हाँ शिवरात्रि आ रही है तो हमें क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, अखबार में एक दो पेज विशेष, चाहे पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन पैसा खर्च करके भी हाँ वो संदेश जो मुख्य मुख्य चित्र हैं वो उसमें डाल देना है। तो बाबा को भी कितनी फिक्र है कि मेरा एक एक बच्चा कोई भी वर्षा लेने से वंचित ना रह जाए, किसी का उलाहना ना रहे कि भगवान आया और हमें पता ही नहीं चला। अब तो हम क्या कहेंगे, बाबा का पार्ट कहाँ पहुंच चुका है, हम सब जानते हैं कि टू लेट हो चुका है। अभी तो जो समय था लेट का अब टू लेट में बदल चुका है। तो कितना कम समय है आज हमारे पास, और ज्ञान सिर्फ दूसरों को बांटने की बात नहीं, लेकिन स्व के प्रति हम उसे कितना यूज करते हैं। समय पर जब हमारे जीवन में माया आती है या हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, जब हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। मुक्ति तो परम धाम का रास्ता बाबा हमें बताता है, और जीवन मुक्ति का अर्थ है जीवन में रहते हुए दुखों रोगों कष्टों से मुक्ति। तो मैं दुख और अशांति के जो कारण हैं उन कारणों का निवारण ज्ञान से कर सकती हूं। वो दुख के कारण जो दुनिया में है वो खत्म नहीं होने वाले हैं ना, वो समस्याएं तो हमारे सामने आने ही वाली हैं, लेकिन वो आते हुए क्या ज्ञान के शस्त्र यूज करके मैं शांत रह पाती हूं, सुख का अनुभव कर पाती हूं, तो इसका मतलब मैंने उसे यूज किया। मानो क्रोध की ही परिस्थिति है, वो हमें दुखी करती है, अब उस क्रोध की परिस्थिति में भी शांति का अनुभव कैसे करना है, वो अगर ज्ञान को मैंने अपने अंदर समाया है तब समय पर हम उसे यूज कर पाएंगे। और नहीं तो जैसे अज्ञानी लोग दुखी होते हैं ऐसे ही हम भी दुखी होते हैं। तो ज्ञान का मैंने क्या किया, सिर्फ श्रवण किया, उसे सिर्फ मैंने सुना, लेकिन उसे समाया नहीं, तो समय पर वो काम नहीं आया। जैसे खजाने होते हैं किसी के पास और वो उसे तिजोरी में बंद रखते हैं, खजाना मतलब धन है लेकिन तिजोरी में बंद है, खुश होते हैं कि बहुत धन है हमारे पास। एक सेठ था, उसके पास बहुत सोना था, तिजोरी में सोना रखा था, और वो बहुत खुश होता था अपना वो सोना देख करके कि मेरे पास इतना सोना है, लेकिन स्वभाव से वो बहुत कंजूस था, कभी भी ना वो खुद यूज करता था ना ही अपने परिवार में किसी को यूज करने देता था। एक दिन जब उसने तिजोरी खोली तो सोना गायब, तो घबरा गया, उसने कहा मेरा इतना सोना कहाँ चला गया, कहीं चोरी तो नहीं हो गया। तो बस उसने अभी तिजोरी बंद की और सोचने लगा क्या करूं, इतने में उसका दोस्त आया, तो दोस्त ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा कि तिजोरी का सोना गुम हो गया है। तो बोला इतना घबरा रहे हो, तो उसने कहा घबराने की बात तो है ही, तो उसने कहा तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारा सोना तुमको लाके दे दूंगा। तो उसने कहा तुम कैसे लाओगे, तो उसने कहा तुम चिंता नहीं करो मैं लाके दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, बोलता है तो शायद कोई होगा इसके पास तरीका। तो दूसरे दिन उसने क्या किया, एक पत्थर लिया और उसके ऊपर सोने का पत्रा जैसे कहेंगे ऐसे उसके ऊपर लपेट के उसको बिल्कुल सोने का गोला जैसे बना के वो दिया उसको। तो वो समझ गया, उसको हाथ में लेते उसे समझ में आ गया कि ये तो सोना नहीं है पत्थर है। तो उसने कहा तुम मुझे पत्थर दे रहे हो, मेरा सोना कहाँ है। तो उसने कहा कि तुम्हारे लिए क्या फर्क पड़ता है पत्थर हो या सोना हो, तुम्हें तो सिर्फ देखना है, यूज तो करना नहीं है। तो हमने भी अगर खजानों को सिर्फ देखकर खुश होते हैं, बाबा ने इतने खजाने दिए हैं, कितने हम खजानों के मालिक हैं, लेकिन अगर उसे यूज नहीं कर रहे अपने लिए और सेवा में उसे सफल नहीं कर रहे तो वो बढ़ता नहीं है, हमारा पुण्य का खाता बढ़ता नहीं है। अगर बढ़ाना है तो उन्हें यूज करना है। अब बाबा ने हमें शक्तियों का खजाना दिया है, सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, और भी विस्तार को सार में लाने की शक्ति है। अब मानो कोई परिस्थिति आई और मुझे शक्तियों को यूज करना है। कई बार हमें सहन भी करना होता है और फिर समाना भी होता है, दोनों ही बातें होती हैं, और कई बार सामना करना होता है। अब मानो मैंने सहन तो कर लिया किसी बात को, किसी ने मुझसे कुछ कहा, मैंने सहन तो कर लिया, लेकिन हम समा नहीं सके उसको। समा नहीं सके माना जो मेरे कोई अपने हैं उनको जाकर के मैंने सारी बात कह दी, देखो ये मेरे साथ ऐसा करते हैं, मैं कितना सहन करती हूँ, कब तक मैं सहन करूँगी, आखिर कब तक मरना पड़ेगा, मतलब इस तरह की बातें अगर हमने की तो फिर हमने समाया नहीं। तो बाबा कई बार कहते हैं सहन करने की कमाल तो की, लेकिन उस कमाल को धमाल में बदल दिया, क्योंकि वो फिर आप तक नहीं रहने वाला है, आपसे एक को गया, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, सारा वातावरण कमजोर हो जाता है उसकी वजह से। तो दोनों शक्तियां साथ साथ चाहिए। तो यदि हमने समय पर गुणों को शक्तियों को प्रयोग कर लिया तो हम सफल हो गए। अब कई बार हमें समाना नहीं है सामना करना होता है, या सहन नहीं करना है सामना करना होता है, परिस्थिति कुछ ऐसी होती है पर हम सही निर्णय नहीं ले सके कि कब हमें सहन करना है कब हमें सामना करना है। तो जहां सहन करना है वहां सामना कर लिया, जहां सामना करना है वहां सहन कर लिया, तो भी वो प्राप्ति हमें नहीं होगी। तो गुणों और शक्तियों को सही समय पर प्रयोग करना, ये अपने पुण्य के खाते को बढ़ाना है। ज्ञान धन हमारा, बाबा कहता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। केवल मुक्ति, जीवन मुक्ति ही हमें मिलती है नहीं, लेकिन ज्ञान जो है वो हमारे लिए, जैसे दुनिया में भी जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं वो अधिक धन कमाते हैं, और ऐसे ही जितना ज्ञान धन से हम अभी संपन्न हैं वो कभी स्थूल धन की भी कमी उनके पास नहीं होगी। तो प्रकृति उनकी दासी होती है और जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं वो सहज पूरी होती हैं। ये भी उस खजाने को यूज करने की विशेषता है। तो स्वयं के लिए अगर हमें यूज करना है तो रोज विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। इसीलिए बाबा कहता है कि मनन चिंतन करो ज्ञान का। सिर्फ एक बार मुरली सुन ली वो काफी नहीं है। कई बार हम देखते हैं भाई बहने मुरली सुन के बाहर आते हैं, फिर एक घंटे के बाद पूछो क्या कहा बाबा ने, मुरली तो बहुत अच्छी थी हाँ, लेकिन याद नहीं आ रहा क्या कहा बाबा ने। और अगर शाम को पूछेंगे तो एक घंटे के बाद थोड़ा जोर लगाएंगे तो शायद फिर भी एक आधी पॉइंट याद आ जाएगी, और शाम को पूछेंगे तो अब जो चीज मेरी स्मृति में नहीं है क्या वो मेरे कर्म में आएगी? नहीं आ सकती है। और इसीलिए हम दादियों को देखते हैं आज भी। दादी प्रकाशमणि जी के साथ हमें रहने का सौभाग्य मिला। आपने भी सुना होगा दादी चार बार मुरली पढ़ती थी। इतनी बार उन्होंने मुरली सुनी, ओम मंडली से वो बाबा के साथ हैं, मुरली सुनी इतने सालों से, लेकिन फिर भी लास्ट समय तक भी दादी चार बार मुरली सुनते थे। सुनते थे यानी खुद पढ़ते थे, एक बार सुनाते थे, रात को सोने से पहले दादी मुरली पढ़ते थे, सुबह अमृत वेले उठने के बाद पढ़ते थे, क्लास में सुनाते थे, और शाम को रेस्ट करने के बाद जब उठते थे दादी तभी भी मुरली पढ़ते थे। और इसलिए हम देखते थे वो बाप समान थे, बाबा की शिक्षाओं का स्वरूप, क्योंकि स्मृति है क्या बाबा ने कहा और जो बाबा ने कहा वो करना है। और बहुत सहज भाव से वो उनका पुरुषार्थ था। कभी भी हमने उनको मेहनत करते हुए नहीं देखा। तो यदि हम भी बाबा के ज्ञान को इतना महत्व देते हैं, नहीं तो कई बार क्या होता है, अगर हम विस्मृति में आ जाते हैं, सारा खेल ही स्मृति विस्मृति का है, यदि हम इस विस्मृति में आ जाते हैं मैं कौन सी आत्मा हूं, तो आज भी बाबा ने कहा ना, देह अहंकार के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। और जगत देह अहंकार आता है, देह अभिमान आता है, पाप मूल अभिमान, सभी विकारों की जड़ देह अभिमान है, पुराने संस्कार सब इमर्ज हो जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं मैं कौन हूं, बिल्कुल ही भूल जाते हैं, और फिर वही चाल जो पुरानी चाल थी हमारी, चाल चलन जिसे बाबा हम कहते हैं। तो अभी हमें अपने चेहरे और चलन के द्वारा सेवा करनी है। हमारी चाल और चलन अभी कैसे होनी चाहिए? जिसका पुण्य का खाता जमा होगा उसका ईश्वरीय नशा और खुशी उसके चेहरे पर दिखाई देगा। दुनिया में भी जो बहुत संपन्न होते हैं उन आत्माओं के चेहरे की झलक और फलक क्या होती है? चेहरा देखते ही पता चलता है कि हाँ ये बहुत संपन्न आत्माएं हैं। तो अगर पुण्य का खाता फुल जमा है तब हमारी भी ब्राह्मण जीवन की झलक फलक कैसी होगी? कैसी होगी? स्वतः ही चेहरा ही सर्विसेबल होगा, चेहरा ही आपका सेवा करता रहेगा। कई बार बोल हमारे ऐसे हो जाते हैं, साधारण रीति से हम बोलते हैं, मतलब साधारण चलन, जैसे दुनिया में हमने किसी के बारे में कुछ भी कह दिया, फलाना ऐसा है फलाना ऐसा है, जिसको बाबा कहता है पर चिंतन करना, कई बार ग्लानी भी कर देते हैं हम उनके बारे में, जो भी उनकी कमियां हम जानते हैं, लेकिन ग्लानी को भी गायन में बदलना, मानो हमने किसी का व्यर्थ चिंतन सुना भी, हम ना करें ये हमारे हाथ में है। कई बार हम ना सुने ये हमारे हाथ में नहीं होता है, मानो वो हमने कभी सुना भी, तो बाबा कहता है कि सुनकर उसको पॉजिटिव में चेंज कर देना, यानी आप अपनी तरफ से कोई उनकी विशेषता बता दो, उसको टेका नहीं दो। कई बार हम कहते हैं हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वैसा ही है। तो अगर हमने ऐसा भी किया तो क्या किया, अपना पाप का खाता बना लिया, हम भागीदार हो गए उसमें। भले मैंने ग्लानी नहीं की, लेकिन अगर मैंने हाँ भी किया तो कई बार इसीलिए कहते हैं कर्म की गति अति सूक्ष्म है। हम सोचते हैं हम तो किसी का बुरा नहीं करते, हम तो किसी को दुख नहीं देते, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, पूछते ना सवाल। ये जो हम सूक्ष्म खाते बनाते रहते हैं इसका कोई हिसाब है? हाँ, सोचते हैं बोलते हैं साधारण रीति से, व्यर्थ समय अपना गंवाते हैं, ये सब वो सब कर्म के हिसाब किताब तो हमें यही चुकतू करने हैं ना। और अगर ब्राह्मण बनने के बाद हम कर रहे हैं तो 100 गुना हो रहा है, वो भी हम हिसाब अगर समझे तो कितना ज्यादा हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दुनिया के हिसाब से हमारा पाप का खाता भी ज्यादा होता है, और पुण्य का खाता भी हमारा पदम गुना होता है। तो हमें वो सावधानी रखने की बहुत जरूरत है ब्राह्मण जीवन में कि मेरा पुण्य का खाता ही जमा होता जाए, पुण्य का खाता ही मेरा बढ़ता जाए। फिर जो भी सेवा हम कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तीन तरह से हम बाबा की सेवा करते हैं। तो सेवा भी अगर हमने ड्यूटी प्रमाण की, मुझे ड्यूटी मिली है, ये ड्यूटी मुझे करनी है, अपना काम पूरा किया, बस मेरा पूरा हुआ, और एक दिल से करते हैं, बहुत दिल से बाबा की सेवा कर रहे हैं, बहुत लगन से प्यार से कर रहे हैं, तो बाबा कहता है उसका पूरा जमा होता है। और यदि हमने सिर्फ ड्यूटी प्रमाण अपना काम किया तो उसमें भी परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है पुण्य जमा होने में, क्योंकि सेवा हमारी कमाई, संगम युग की कमाई का सबसे बड़ा साधन है, जो भी हम मनसा वाचा कर्मणा सेवा कर रहे हैं। और कई बार हमें वाचा का चांस नहीं मिलता है, क्योंकि वाचा सेवा सब नहीं करते हैं। चलो हम अपने मिलने वालों को अपने अनुभव सुनाकर सेवा कर सकते हैं, जो भी हमारे मित्र संबंधी हैं उन तक बाबा का ज्ञान पहुंचे, ये हमारी जिम्मेवारी है। और वो हमसे ज्ञान सुनकर के ज्यादा संतुष्ट नहीं होते, यह हम सब जानते हैं। हमारे मित्र संबंधी हमसे ज्ञान सुनकर संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन आपके जीवन देख करके उनकी सेवा हो सकती है। तो अगर मित्र संबंधियों की सेवा करना चाहते हैं हम, तो हमारा जीवन बिल्कुल बाबा की श्रीमत प्रमाण होना चाहिए, तब हम उन आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। लेकिन हम कर्मणा सेवा वो सहज कर सकते हैं, जब भी यज्ञ सेवा में हमें चांस मिलता है, चाहे हम सेंटर पर रहते हैं, वो भी सेंटर पर रहते हैं या सेंटर पर जाते हैं, सेवा के प्रोग्राम आजकल होते ही रहते हैं और उसमें भाई बहनों का सहयोग होता ही है, उसमें हमें जो भी सेवा मिलती है वो सेवा हम करते हैं, वो कर्मणा सेवा का चांस भी हमें लेना है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बर्तन मांजने की बात जैसे बाबा ने कही आज मुरली में, अब ऐसी सेवा करना लोग पसंद नहीं करते हैं, सफाई करना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, आजकल घरों में भी नहीं करते हैं लोग, घरों में भी नौकर रख लेते हैं, सफाई करना है, बर्तन मांजना है, फिर बाबा के घर में जाकर के, जैसे गुरुद्वारे वगैरह में जाते हैं कई बार देखते हैं, वहां भी लोग इस तरह से सेवा करते हैं। जो सेवा मैंने देखा वहां, तो जूते चप्पल की सेवा भी लोग करते हैं, जूते चप्पल रखना देना ये सब, अच्छे बड़े बड़े लोग, अच्छे धनवान लोग भी इस तरह की सेवा करते हैं। तो जितना हम देही अभिमानी होकर के जो सेवा मिले, नहीं मैं तो फलाना हूं और मेरी ये विशेषता है, हम तो ये कर सकते हैं, बहुत बुद्धिशाली हैं, मानो कोई ऊंची पोस्ट पर काम करते हैं। वैसे तो बहनें जो सेवा देती हैं वो योग्यता के प्रमाण ही देती हैं, लेकिन कभी अगर ऐसा होता है, मानो इस तरह की कोई सेवा की भी आवश्यकता पड़ गई, तो फिर यदि हम बाबा की याद में वो सेवा दिल से करते हैं, तो वो हमारा जो पुण्य जमा होता है वो उससे भी अधिक होता है, जो हम समझते हैं मुझे सेवा मिलनी चाहिए। तो कर्मणा सेवा का भी जब भी हमें चांस मिलता है वो भी हम दिल से करें। और बाबा कहता है मनसा तो हम हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि वाचा कर्मणा के तो चांस की बात है, लेकिन मनसा सेवा तो अगर हम बीमार हैं तो भी कर सकते हैं, अगर हम बिस्तर पर हैं, अगर हमारी बुद्धि सालिम है, कोई मानसिक रोगी है उसकी बात अलग है, लेकिन अगर शरीर अस्वस्थ है लेकिन अगर मन स्वस्थ है हमारा, और यदि हम अतिंद्रिय सुख की स्थिति का अनुभव करते हैं, फिर भी उस रोग का प्रभाव मेरे मन पर नहीं है, मेरी आत्मा स्वस्थ है, तो हम बहुत अपने भाई बहनों को देखते हैं, दादियों के द्वारा हम देखते हैं कैसे सेवा हुई है, क्योंकि तन के हिसाब किताब भी हम सब यहीं चुकतू करते हैं, तो कोई ना कोई तन की बीमारी ऐसी हो ही जाती है कभी ना कभी, कभी हमें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, मानो कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है, ऐसा होता है। तो अगर उस समय मेरे मन की स्थिति सुख शांति की है तो जो डॉक्टर हैं वो भी फील करते हैं कि ये पेशेंट मेरे और पेशेंट से बिल्कुल अलग है। ये आकर के अपने दुख का रोना हाय हाय नहीं करते हैं ये, या वो ऐसा फील करते हैं कि इनको मिलने से मुझे इनको कहेंगे कि भाई हालचाल पूछ के इनको मैं सुख दूं, वो वाली बात नहीं, बाकी इनसे मिलकर मुझे सुख का अनुभव हो रहा है। तो गुलजार दादी और निर्वैर भाई हमारे, हम सब जानते हैं। तो जब एक बार वो बॉम्बे हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया था, ये जो ग्लोबल हॉस्पिटल बना वो उसी का परिणाम है। ये जो डॉक्टर अशोक मेहता जब दादी से मिलने आते थे तो उनसे ऐसा ही फील करते थे कि ये मेरा पेशेंट तो वंडरफुल पेशेंट थे, तो और सबसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि दादी पूछती थी बिल्कुल, दादी आराम में है और पूछती थी डॉक्टर आप कैसे हो, और पेशेंट तो आते ही डॉक्टर ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसकी बजाय आप कैसे हो। तो इतना प्रभाव पड़ा कि जब दादी ने उनको माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया उसको, और वो माउंट आबू आए। और जब माउंट आबू आए और वो सब बाबा का कार्य उन्होंने देखा, तो उनको वो संकल्प आया कि इतनी बड़ी ये संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यहाँ तो एक अस्पताल होना चाहिए। तो उन्होंने दादी जी को संकल्प दिया कि दादी जी यहाँ एक अस्पताल होना चाहिए। और फिर उसके बाद निर्वैर भाई जब एडमिट हुए तो एक वाटुमल हैं जो अपनी दादियों में से ही किसी दादी के संबंधी थे, वो उनसे मिलने के लिए आए। और जब वो उनसे मिले तो इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कहा कि उस हॉस्पिटल जो आप हॉस्पिटल क्या बनाने का सोचते हैं उसके लिए जो धन चाहिए वो धन में से 50 लाख जो हैं वो मैं आप शुरुआत करो और मैं आपको वो धन देता हूँ। तो देखिए, और इस तरह से वो ग्लोबल हॉस्पिटल, तो सेवा हुई। ऐसे बाबा कहता है कि आप जहाँ भी जाते हो लेकिन अगर हमारा मन स्वस्थ है और बाबा की याद है तो वो भी सेवा इस तरह से पुण्य को बढ़ाने वाली हो जाती है। आज उससे कितनी आत्माओं की दुआएं, आज हॉस्पिटल से कितनी सेवा हो रही है, कितने जो दुखी हैं, रोगी हैं, उन आत्माओं के कष्ट दूर हो रहे हैं, शारीरिक कष्ट, क्योंकि दोनों ही आत्मा और शरीर दोनों से मिलकर के हमारा ये जीवन है। तो संगम युग में शरीर भी वैल्यूबल है, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तभी हम पुरुषार्थ कर पाते हैं, तभी तीव्र पुरुषार्थ कर पाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है शरीर की नॉलेज होना भी आवश्यक है कि हम शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकें। तो वो नॉलेज देने के लिए भी स्थान बना डबल हॉस्पिटल। ये अपना हॉस्पिटल तो है ही, रूहानी हॉस्पिटल तो है ही, पर शारीरिक कष्ट भी दूर हो, वो हॉस्पिटल के भी वो निमित्त उनकी वो सेवा बन गई। तो हमारा जीवन भी ऐसा हो कि अन्य आत्माओं के प्रति जो भी हमारे भाव भावनाएं हैं वो सदा पवित्र हों, शुद्ध हों, हमारे जो बोल हैं उनके उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हों, उनको हिम्मत देने वाले हों, श्रेष्ठ कर्म हों जो सदा दूसरों को सुख देने वाले हों, संतुष्ट करने वाले हों। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हम सुख देने का सोचते तो हैं, हमसे सब संतुष्ट रहें, लेकिन ये तो संभव ही नहीं है कि सब हमसे संतुष्ट रहें, हो ही नहीं सकता है। कोई ना कोई तो असंतुष्ट हो ही जाता है, कोई ना कोई तो नाराज हो ही जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी हमारे प्रति भावनाएं अच्छी नहीं होती, कभी ईर्ष्या की भावना है या उनकी ही हमारे प्रति नफरत की भावना है। हम कितना भी अच्छा कर लें उनके लिए, कितना भी अच्छा उनको देने की कोशिश करें, लेकिन उनको हमारा वो अच्छा अच्छा लगता ही नहीं है। अब उनको हमारे में कोई ना कोई नेगेटिविटी नजर आई जाती है, मतलब मेरी नजर कहाँ है, कमी पर है या विशेषता पर है, उस पर ही वो निर्भर करता है। तो बाबा कहता है 5% की छूट है, 100 में से अगर 5 आपसे असंतुष्ट होते हैं तो वो माफ है, वो कोई बात नहीं, इतना हिसाब किताब तो रहेगा, लेकिन उसको भी शुभ भावना शुभकामना से चुकतू करना है। अब बढ़ता कैसे है वो भी हमने समझ लिया कि अगर उनकी भावना नेगेटिव है और मेरी भी नेगेटिव हो गई तो हमने उसको बढ़ा लिया, लेकिन अगर उनकी नेगेटिव है लेकिन फिर भी मेरी भावना शुभ है पॉजिटिव है तो वो हमने उसको चुकतू किया और धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा, तो वो परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरह से यदि हम चाहते हैं कि कम समय में हम अपने पूरे कल्प की फुल कमाई जमा करें, मम्मा बाबा के समान हम उतना श्रेष्ठ पद पाएं, हम राज्य अधिकारी बने, तो हमें अपने पुण्य के खाते को जमा के खाते को बढ़ाने के लिए फुल अटेंशन रखना है, अपनी मन वचन कर्म की पूरी चेकिंग रखनी है। ओम शांति।